नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर कहा है कि भारत के अभ्युदय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कल सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणामों की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर जिंग मेसार ने दूसरी बार भी सिविल सेवा परीक्षा 2025 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उन्यन आरांग उत्सव के अवसर पर राज्यवासियों विशेषकर आदि जनजाति को हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा है कि उत्सव आदि समुदाय के नए वर्ष के और एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष में आठवें दिन प्रवेश किया। अमेरिका ने इसराइल को $151 मिलियन की हथियार बिक्री को मंजूरी दी। तेल कंपनियों ने महानगरों में गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों पर ₹60 और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतों पर ₹115 की बढ़ोतरी की। और चेक गणराज्य में प्राग में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में टी उकेश ने नौवे और अंतिम दौर में स्पेन के डेविड एंटोन गहारो को हराया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के उत्थान का आकलन इसकी अपनी शक्ति के आधार पर किया जाएगा, न कि दूसरे देशों की गलतियों के आधार पर। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर उन्होंने कहा है कि भारत के अभ्युदय की दिशा में बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत की प्रगति से हिंद महासागर के अन्य देश भी लाभान्वित होंगे। जो भारत के साथ होंगे उन्हें अधिक लाभ मिलना तय है।
इंडिया हैज अ पर्टिकुलर सेलियंस।
हिंद महासागर के संदर्भ में भारत का विशेष महत्व है और इसलिए यह एक विशेष जिम्मेदारी और योगदान भी है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे अच्छे संबंधों के चलते हम कई देशों को एक मंच पर ला सकते हैं। शायद वे हम पर अधिक भरोसा करते हैं या हमारे साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। हमारी संस्थाएं IORA, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, बिम्स्टेक, विशाल हिंद महासागर को बृहत्तर आकार दे रही है। अपने सहयोगी देशों सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका की नौसेनाओं और तटरक्षक बलों के साथ हमारा एक लंबा सहयोगात्मक इतिहास रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने उन्यन आरांग उत्सव के अवसर पर राज्य के लोगों विशेष रूप से आदि जनजाति को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि हर साल मार्च में मनाया जाने वाला यह उत्सव आदि समुदाय के नए वर्ष और एक नए कृषि चक्र की शुरूआत का प्रतीक है। चूहों को फंसाने जैसे पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित यह उत्सव प्रकृति और टिकाऊ खेती के प्रति समुदाय की गहरी समझ को दर्शाता है। सदियों पुरानी प्रथाएं धान की फसल की बुआई से पहले पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए फसलों की सुरक्षा करने में सहायक होती है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि समुदाय के बुजुर्ग युवा पीढ़ी को अपनी पारंपरिक बुद्धिमत्ता को संजोने, जिम्मेदार खेती को बढ़ावा देने और हमारे बहुमूल्य जीव जंतुओं व वनस्पतियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के प्रति समर्पित रहने के लिए निरंतर मार्गदर्शन देते रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कल सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर जिंग मेसार ने दूसरी बार भी सिविल सेवा परीक्षा 2025 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने डॉक्टर मेसार की उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए और इसे उनकी असाधारण दृढ़ता और अनुशासन का प्रतीक बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा है कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा को दूसरी बार उत्तीर्ण करना वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो डॉक्टर मेसार की लगन, समर्पण और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ईस्ट सियांग जिले में मिरम गांव के रहने वाले डॉक्टर मेसार एक MBBS स्नातक है और उन्होंने पिछले वर्ष UPSC परीक्षा में 846वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की थी। इस वर्ष एक बार फिर 918वीं रैंक के साथ मिली उनकी सफलता सिविल सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने के प्रति उनकी लगन और प्रतिबद्धता को उजागर करती है। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के आठवें दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान ने हवाई और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को $15 करोड़ से अधिक के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। आज तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर हवाई हमले किए गए। इसराइली सेना ने तेहरान पर फिर हमले की चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल से हवाई हमलों में अब तक 1,332 लोग मारे गए हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और ईरान को बिना शर्त समर्पण करना होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि बिना शर्त समर्पण की अमेरिका की मांग ख्वाब ही रहेगी। उन्होंने खाड़ी देशों में ईरान के हमलों पर खेद भी व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि हमले सेना के भीतर गलतफहमी के कारण हुए और ईरान हमले रोक देगा। कतर स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए कुछ और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यह नंबर है +97455647502, +97455362508 और +97455384683। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ये नंबर 2400 घंटे उपलब्ध रहेंगे। दूतावास से ईमेल पते cons.doha@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इस खबर का खंडन किया है कि सऊदी अरब ने एक भारतीय सहित इसराइल की खुफिया एजेंसी मसौदा को दो एजेंटों को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मंत्रालय ने लोगों से निराधार दावों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा है कि संथाली संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से गहरे से जुड़ी हुई है। पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति के साथ मनुष्य के सह अस्तित्व के अनुकूल है। राष्ट्रपति ने कहा कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है।
2003 के संथाली समुदाय के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस वर्ष संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात का गर्व है, संथाली भाषा को संविधान में स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं मांग किए थे, मैं भी थोड़ा उनमें से एक हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और 2003 में संविधान के अष्टम परिषद में उसको।
शतरंज में चेक गणराज्य में प्राग अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग में ग्रैंड मास्टर डिकुकेश ने कल 9वें और अंतिम दौर में स्पेन के डेविड एंटोन गेहारो को हराया। अरविंद चिदम्बरम ने अंतिम दौर में चेक गणराज्य की डेविड नवारा को हराकर 5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत आज से 60 रूपये बढ़ गई है। यह दर महानगरों में लागू होंगी। अब दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 913 रूपये, मुंबई में 912 रूपये 50 पैसे, कोलकाता में 939 रूपये और चेन्नई में 928 रूपये 50 पैसे हो गए हैं। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 115 रूपये की वृद्धि की गई है। आज जन औषधीय दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लाभान्वित लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि परियोजना से अनगिनत परिवारों के इलाज में खर्चे में बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण पारक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज केरल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। श्री कुमार ने बताया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के अलावा विभिन्न पक्षों से बातचीत भी की।
हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ विस्तृत चर्चा की। हमने केरल के उन युवाओं से भी मुलाकात की जो आगामी चुनाव में मतदान करेंगे। मैं साक्षरता क्लब और उन सभी युवा लड़कों और लड़कियों की भी सराहना करता हूं जिनसे हम यहां आने से पहले मुलाकात की। हम अपने बूथ स्तरीय कर्मियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। केरल ने दुनिया के कई हिस्सों को लोकतंत्र का सही अर्थ सिखाया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर कहा है कि भारत के अभ्युदय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे कोई रोका नहीं जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कल सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणामों की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर जिंग मेहसान ने दूसरी बार भी सिविल सेवा परीक्षा 2025 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उन्यन आरांग उत्सव के अवसर पर राज्यवासियों विशेषकर आदि जनजाति को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष ने 8वें दिन में प्रवेश किया। अमेरिका ने इसराइल को $151 मिलियन की हथियार बिक्री को मंजूरी दी। तेल कंपनियों ने महानगरों में गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में 60 रूपये और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतों पर 115 रूपये की बढ़ोतरी की। और चेक गणराज्य के प्राग में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में डिकुकेश ने 9वें और अंतिम दौर में स्पेन के डेविड एंटोन गेहारो को हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।